أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أعزائي المحترم، دعائے أبو حمزة الصومالي ہم پڑھ رہے تھے اور اس کا زیادہ تر حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ایک حصہ اس کا رہتا ہے، آج انشاءاللہ اسی کو پڑھ رہے ہیں. اور دعا ابو حمزہ صومالی چوتھے امام کی، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو آپ کے جلیل القدر صحابی جناب ابو حمزہ صومالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نقل کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا الرحمن الرحیم. اے معبود، مجھے روزی میں کشائش، وطن میں امن، اور میرے رشتہ داروں اور میرے مال اور میری اولاد کے بارے میں خنکی چشم عطا فرما، یعنی رشتہ داروں کے بارے میں اور مال اور اولاد کے بارے میں میری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، انہیں دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، اور اپنی نعمتوں میں مجھے خصوصی حصہ عطا فرما. بدن میں صحت و تندرستی اور توانائی عطا فرما. دین میں سلامتی عنایت فرما، اور مجھے ایسے عمل کی توفیق دے کہ میں تیری بندگی اور تیرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں رہوں جب تک تو مجھے زندہ رکھے. یہاں پر ایک چیز کی طرف متوجہ ہوں، جیسے اوپر جو دعاؤں کا تقاضا، جن نعمتوں کا تقاضا دعا کی شکل میں کیا گیا کہ جیسے روزی میں کشائش، وطن میں امن، رشتہ داروں، مال، اولاد کے بارے میں خنکی چشم، اور نعمتوں میں سے خصوصی حصہ بدن کی اور صحت کی تندرستی اور توانائی، پھر دین کی سلامتی، اور اس کے بعد جو بتایا نا، وہ سمجھے ان سب چیزوں کا راز ہے. وہ یہ ساری چیزیں اس آخری جملے کے اندر جو بات ہوئی نا، اس کے ذریعے وہ ساری چیزیں ادا ہوں گی. اور وہ کیا تھا کہ میں تیری بندگی اور تیرے رسول کی فرما برداری میں رہوں. اللہ کی بندگی میں اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں رہیں گے تو اوپر جو نعمتیں بیان ہوئی وہ سب عطا ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے. جب تک تو مجھے زندہ رکھے، مجھے اپنے ان بندوں میں قرار دے جن کا حصہ تیرے ہاں ان بھلائیوں میں بہت زیادہ ہے جو تو نے نازل کی اور نازل کرتا ہے ماہ رمضان میں اور شب قدر میں، جو تو ہر سال کے دوران نازل کرتا ہے، یعنی وہ رحمت جسے تو پھیلاتا ہے، وہ آرام جو تو دیتا ہے، وہ سختی جسے تو دور کرتا ہے، وہ نیکیاں جو تو قبول کرتا ہے. اور وہ گناہ جو تو معاف کرتا ہے، اور مجھے اپنے بیت الحرام کعبہ کا حج اس سال اور آئندہ سالوں میں بھی نصیب فرما، اور مجھے اپنے وسعت والے فضل سے کشادہ رزق عطا فرما. اے میرے سردار، بری چیزوں کو مجھ سے دور رکھ، میرے قرض और नाहक ली हुई चीजों को मेरी तरफ से लौटा दे, हत्ता कि मुझ पर ईजा न रहे, और मेरे दुश्मनों, हासिदों और मुखालिफों के कान और आंखें मेरी तरफ से बंद कर दे, और उनके मुकाबले मेरी मदद फरमा, मेरी आंखें ठंडी कर और मेरे दिल को फरहत दे, मेरी तकलीफ और परेशानी के दूर हो जाने का जरिया पैदा कर दे। यहाँ पे जैसे गुनाहों की जो माफी है, कुछ गुनाह तो ऐसे हैं कि जिनकी माफी तलब मगफिरत करना है, खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाना है, खुदा के हुजूर माफी तलब करना है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनका अजाला करना होता है, जैसे अगर किसी का हक है तो उसके हक को उसकी तरफ लौटाना ही उस गुनाह का अजाला है। अगर किसी का दिल दुखाया है, किसी के ऊपर अजियत की है, या खुदा ने खास्ता किसी पर कोई जुल्म किया है, तो उसका, उस गुनाह का अजाला, उस गुनाह की तौबा कैसे है कि उसका अजाला करना है, उस बंदे को राजी करना है कि जिसका दिल दुखाया था, उस बंदे का हक उसे लौटाना है कि जिसका हक जुल्म के जरिए से गसब किया था। इसी तरह कर्ज है, अदा करना है। मेरी तकलीफ और परेशानी के दूर हो जाने का जरिया पैदा कर दे, तेरी सारी मखलूकात में से जो मेरे लिए बुरा इरादा रखता है, उसे मेरे पांव तले डाल दे। यानी जो मुझसे बुराई का इरादा रखता है, जो मुझसे किसी बदी की नियत रखता है, तो तू उसको मेरे तहत कर दे, मेरे मातहत कर दे। और शैतान और सुल्तान के शर और बुरे आमाल से बचने में मेरी मदद फरमा, शैतान के शर से और जाबिर सुल्तान के दर शर से बचाना, बचा। और उसके लिए तरीका क्या है? बुरे अमाल से बचना है। अगर शैतान के शर से बचना चाहते हैं तो फिर बुरे अमाल से बचना है, जो इसी दुआ के ही जुमले में बयान हुआ। और मुझे सब गुनाहों से पाक कर दे, अपनी दरगुजर के साथ मुझे जहन्नम से पनाह दे, अपनी रहमत से मुझे जन्नत में दाखिल कर, अपने फजल से हूरुल ऐन को मेरी बीवी बना दे, और मुझे अपने प्यारों और नेकोकारों के साथ जगह दे, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उनकी खुश अतवार आल अलैहि सलाम हैं। यानी अपने उन प्यारों के साथ मुझे जगह दे। किन प्यारों के साथ? रसूलुल्लाह और उनकी आल के साथ। और पाकीजा, शफाफ और पाक दिल उन पर, उनके जिस्मों पर, यानी अल्लाह के नबी और उनकी आल की बात हो रही है, वो कि जो पाकीजा पाकीजा शफाफ और पाक दिल वाले हैं, आले मोहम्मद अल्लाह के नबी, उन पर, उनके जिस्मों पर और उनकी रूहों पर रहमत फरमा, और उन पर रहमत खुदा और उसकी बरकतें हों। मेरे अल्लाह, मेरे आका, तेरी इज्जत तो जलाल की कसम, अगर तू मेरे गुनाहों की बाज पुरस करेगा तो मैं तेरे अफ की ख्वाहिश करूंगा। अगर तू ने मेरी पस्ती पर पूछ गछ की तो मैं तेरी मेहरबानी की तमन्ना करूंगा। अगर तू मुझे दोजख में डाल देगा, मैं वहां के लोगों को बताऊंगा कि मैं तुझसे मोहब्बत करता रहा हूं। मेरे माबूद, मेरे सरदार, अगर तूने अपने प्यारों और फरमा बरदारों के सिवा किसी को माफी न दी, तो गुनाहगार लोग किससे फरियाद कर सकेंगे? और अगर तू सिर्फ अपने वफादारों को इज्जत अता फरमाएगा तो फिर खताकार लोग किससे दाद और फरियाद करेंगे। मेरे माबूद, अगर तू मुझे जहन्नम में डालेगा तो इसमें तेरे दुश्मनों ही को खुशी होगी, और अगर तू मुझे जन्नत में, अगर तूने मुझे जन्नत में दाखिल किया तो इसमें तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसर्रत होगी। और कसम बखुदा मैं ये जानता हूँ कि तुझे अपने दुश्मन की खुशी की निस्बत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मंजूर है। यहाँ पे इस बात की तरफ तवज्जो रखिएगा, ये जो अंदाज अपनाया है और ये जो कहा है कि अगर तू मुझे जहन्नम में डाल देगा तो इससे तेरे दुश्मन खुश होंगे, अगर तू मुझे जन्नत में दाखिल करेगा तो तेरे नबी को खुशी होगी। तो याद रखिएगा, ये उस शख्स की बात हो रही है, ये ऐसे बंदे की बात हो रही है कि जिसके गुनाह और खताएं ऐसी हैं कि जिसमें उसका इसरार नहीं है। ऐसा बंदा है कि ऐसा नहीं है कि अपने फराइज से बिल्कुल ही गफलत बरत चुका है, ऐसा नहीं है कि दबा के इस दुनिया में गुनाह करता ही रहा है और खुद को अजाब खुदा का मुस्तहिक बना चुका है। उनकी बात नहीं हो रही, याद रखिएगा। ये जो कहा ना कि तेरे नबी को खुशी होगी अगर तू मुझे जन्नत में डालेगा, तो रसूलुल्लाह को कभी इस बात की खुशी नहीं होगी एक इंसान के जिसने इस पूरी जिंदगी को अल्लाह की नाफरमानियों में गुजारा है, लोगों पर जुल्म किए हैं, कोई अपना वाजिब अदा नहीं किया, एक अच्छा इंसान नहीं बन सका, एक अच्छा मुसलमान नहीं बन सका, जो दी में आए किया, जिस पर चाहे जुल्म किया, जिस पर चाहे ज्यादती की, शराब कबाब हर किस्म के गुनाह में आलूदा रहा। ऐसा नहीं है कि ऐसे को अगर जन्नत में डाल दिया जाएगा तो अल्लाह के नबी को खुशी होगी। यकीनन अल्लाह के नबी को खुशी उसके बारे में होगी कि जिसने इस सिरात मुस्तकीम की तरफ पूरी कोशिश की है, पूरा जोर लगाया है, कोशिश की है, जस्तजू की है। बस सिर्फ यह है कि जहां वो लड़खड़ा गया, जहां डगमगा गया, अगर उससे खता हो गई, उससे गुनाह हो सकता है, गुनाह कबीरा सरजद हो जाए, लेकिन हठधर्म नहीं है, लेकिन जानबूझ के इनकार करने वाला नहीं है, तो उसके बारे में है, उसके लिए गुंजाइश है। ए अल्लाह, मैं सवाली हूं तुझसे कि मेरे दिल को अपनी मोहब्बत से, अपने रोब से और अपनी किताब की तस्दीक से भर दे, मेरे दिल को ईमान, खौफ और शोक से पुर कर दे, यानी मुझे खौफ भी हो और शोक भी हो। बंदे मोमिन की दो हालतें रहती, वो खौफ में रहता है खुदा के अजाब के डर से और उसको शोक रहता है खुदा की रहमत की उम्मीद से। ए बुजुर्गी और इज्जत के मालिक, मेरे लिए अपनी हुजूरी महबूब बना और मुझसे मुलाकात को महबूब रख, और मेरे लिए अपनी मुलाकात को खुशी, कुशादगी और फख्र और इज्जत का जरिया बना। यानी खुदा, जब मैं तुझसे मुलाकात करूं, अब ये मुलाकात चाहे मौत के वक्त की मुलाकात हो, ये मुलाकात नमाज के वक्त की मुलाकात हो, अल्लाह से राज और नियाज के वक्त की मुलाकात हो, यानी ये मुलाकात खुदा ऐसा हो कि मेरी नजर में महबूब हो, मैंने सबसे ज्यादा मोहब्बत करूं इस मुलाकात से, तुझसे मिलने को मुझे मुझे तड़प हो, मैं मोहब्बत करूं, मैं चाहूं, मेरा दिल चाहे कि मैं तुझसे मुलाकात करूं। नमाज अल्लाह से मुलाकात है और बंदे मोमिन की निशानियों में से है कि नमाज के वक्त उसकी पूरी तवज्जो नमाज की तरफ होती है। अगर किसी और काम में लगा हुआ भी है तो बेचैन हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसको मोहब्बत है अल्लाह से मुलाकात करने में, उसको लुत्फ आता है, आशिकाना जाता है खुदा से मुलाकात के लिए। और जो फिर मौत का वो लम्हा है बंदे मोमिन के लिए, वो भी खुदा की हुजूरी वाला लम्हा है। अमीरुल मोमिनीन का जब आपके पेशानी मुबारक पे जरबत लगी तो आपके मुंह से जो जुमला निकला है वो फुज तो व रब्बिल काबा है, काबा के रब की कसम, अली कामयाब हो गए। क्यों? महबूब से मुलाकात का वक्त आ गया। और अली का महबूब वहदहु ला शरीक था। ए माबूद, मुझे गुजरे हुए नेक लोगों से मुलहक फरमा दे और मौजूदा नेक लोगों में शामिल कर दे, मेरे लिए नेकोकारों का रास्ता मुकर्रर कर दे और मेरे नफ्स के बारे में मेरी मदद कर, जैसे कि तू अपने नेक बंदों की उनके नफ्सों पर मदद फरमाता है। मेरे अमल का अंजाम खैर के साथ कर और अपनी रहमत से उसके सवाब में मुझे जन्नत अता फरमा, और जो नेक अमल तूने मुझे अता किया है उस पर मुझको साबित कदम रख। याद रहे, नेकी करना एक काम एक मरहला है, उस पर साबित कदम रहना उससे अगला मरहला है जो ज्यादा सख्त है और इसका अजर भी ज्यादा है, मुस्तकिलन नेकी अंजाम देने वाला। कुछ मौसमी नेकोकार होते हैं, सीजन वाइज नेकोकार होते हैं, जैसे रमजान में सब लोग कोशिश करते हैं इबादत बजा लाएं, जिक्र अजकार में मसरूफ रहें, हत्ता कि अब तो आप देखते हैं कि जो सारा साल नाच गाने में मसरूफ होते हैं वो भी रमजान के इस एक महीने में मौसमी जो है वो नेकी की तरफ आने की एक जस्तजू में लगे होते हैं। अगर वो खालिस होकर कोशिश कर रहे हैं, खुदा तौफीक दे कि वो मुस्तकिल इसकी तरफ आए। याद रखें, ईमान और नेकी के रास्ते पर साबित कदम रहना ये इंसान को आगे लेके जाता है, वरना सीजन वाइज नेकी जिस तरह आती है उसी तरह उसका अजर और उसके असरात भी, जब वो खत्म हो जाए सीजन तो उसके असरात भी इसी तरह खत्म हो जाते हैं। ए पालने वाले, जिस बुराई से तूने मुझे निकाला है उसकी तरफ न पलटा, यानी अगर बुराई छोड़ के आ गए हो, माह रमजान में बुराइयों को छोड़ के आ गए हो, अब ऐसा ना हो कि रमजान खत्म होने पर दोबारा वापस उन्हीं बुराइयों की तरफ चले जाओ। इसलिए खुदा से दुआ भी यही है कि खुदाया जिन बुराइयों से तूने मुझे निकाला है उनकी तरफ न पलटा। ए जहानों के परवरदिगार, ए माबूद, मैं तुझसे वो ईमान मांगता हूँ जो तेरे हुजूर मेरी पेशी से पहले खत्म न हो। मुझे जिंदा रखना तो उसी ईमान पर जिंदा रख, और मौत देनी है तो उसी ईमान पर मौत दे। जब मुझे उठा ले तो उसी पर उठा खड़ा कर, और मेरे दिल को दीन में दिखा दे। शक और सताइश तलवी से पाक रख, यहां तक के मेरा अमल तेरे लिए खास हो जाए, यानी शक से और दूसरों की तारीफें सुनने से निकल आऊं मैं, यानी अपने आप को इसलिए अमल ना करूं कि लोग मेरी तारीफ करें। मुझे इससे निकाल ले, यहां तक कि मेरा अमल तेरे लिए खास हो जाए। ए माबूद, मुझे अपने दीन की पहचान, अपने हुक्म की समझ और अपने इल्म की सूझबूझ इनायत फरमा, और मुझे अपनी रहमत के दोनों हिस्से दे और ऐसी परहेजगारी दे जो मुझे तेरी नाफरमानी से रोके, और मेरे चेहरे को अपने नूर से रोशन फरमा, मेरी चाहत उसमें करार दे जो तेरे पास है, और मुझे अपनी राह में और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के गिरोह में मौत दे कि उन पर और उनकी आल पर खुदा की रहमत हो। ए माबूद, मैं सुस्ती, बददिली, परेशानी, बुजदिली, कंजूसी, गफलत, संगदिली, खारी और फिक्र व फाका से तेरी पनाह लेता हूँ। यानी ये वो सिफात हैं, ऐसी बीमारियां हैं कि जो इंसान को तबाह कर देती हैं, लिहाजा इससे अल्लाह की पनाह में जाना। और याद रखिएगा, आऊदू का जो अमूमन तर्जुमा किया जाता है, आऊदू बाज तर्जुमा से कहते हैं पनाह मांगता हूँ, जबकि आऊदू का माना पनाह मांगता हूँ नहीं है, कि अगर हम कहें ना आऊदू पनाह मांगता हूं तो इसका मतलब बनता है कि मैं अल्लाह से पनाह मांग रहा हूं, अब अल्लाह मुझे पनाह ना दे, मुझे शैतान से ना बचाए, तो याद रहे आउदु का जो माना बनता है उर्दू जुबान के हिसाब से वो है पनाह में आता हूँ, मैं पनाह में आता हूँ, आउदु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, यानी इंसान खुद जाएगा अल्लाह की पनाह में। यहाँ पर जो कहा ना कि खुदा मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ, मैं तेरी पनाह में आता हूँ, किन किन चीजों से? सुस्ती से। अब सुस्ती जब तक खुद तर्क ना करे इंसान, ऐसा नहीं हो कि खुदा किसी फरिश्ते को भेजे और पकड़ के बाजुओं से उठा के काम करवाए, बस सुस्ती है। अगर इससे अल्लाह की पनाह में आना है तो खुद इससे निकलना है। बददिली हो, परेशानी है, बुजदिली है, कंजूसी है, गफलत है, संगदिली है, खारी है, फिक्र फाका है। फिक्र फाका से भी अगर अल्लाह की पनाह में आना है तो उसके लिए कोशिश करनी होगी, हाथ पैर चलाने होंगे। और तमाम सख्तियों और बेहयाई के जाहिर और पोशीदा कामों से तेरी पनाह में आता हूँ, और तेरी पनाह में आता हूँ सैर न होने वाले नफ्स पर, और पुर न होने वाले शिकम, न डरने वाले दिल, न सुनी जाने वाली दुआ, और फायदा न देने वाले काम से, और तेरी पनाह में आता हूँ ए पालने वाले, अपने नफ्स, अपने दीन, अपने माल और जो तूने मुझे दिया है उसमें रांधे हुए यानी निकाले गए शैतान से तेरी पनाह में आता हूँ परवरदिगारा। बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है ए माबूद, सच तो ये है कि तुझसे मुझे कोई पनाह नहीं दे सकते। यानी खुदा अगर मैं तुझसे फरार करूं, तेरा मुजरिम बन जाऊं, तो मेरे लिए कोई जाए पनाह नहीं है, कोई नहीं है कि जो मुझे संभाले, कोई नहीं है कि जो तेरे मुकाबले में मुझे पनाह दे। नहीं तेरे सिवा कोई पनागाह पाता हूं, बस मेरे नफ्स को अपनी तरफ के किसी अजाब में न डाल, और न मुझे किसी तबाही की तरफ पलटा, और न मुझे दर्दनाक अजाब की तरफ रवाना कर। ए माबूद, मेरा अमल कबूल फरमा, मेरे जिक्र को बुलंद कर, मेरे मकाम को ऊंचा कर, और मेरे गुनाह मिटा दे, मुझे मेरे गुनाहों के साथ याद न फरमा, और मेरे बैठने का सवाब, मेरी गुफ्तगू का सवाब, और मेरी दुआ का सवाब अपनी खुशनूदी और जन्नत की शक्ल में दे। याद रखिएगा, जब तलब की जा रही है, हम लोगों की दुआओं में अक्सर क्या है, अगर आप गौर करें, मैं और आप अगर हम गौर करें, हमारी अक्सर दुआएं दुनिया के लिए होती, हम दुनिया मांग रहे होते हैं, दुनिया की चीजें मांग रहे होते हैं, यहाँ की दौलत, यहाँ के पैसे, यहाँ के कारोबार, यहाँ के नेमतें, यहाँ की आसाइशें, इस दुनिया के लिए, औलाद के लिए सुकून और राहत, घर का सुकून, इस दुनिया की ज्यादातर चीजें हम, हमारी दुआओं में 80% चीजें हम दुनिया की मांग रहे होते हैं, जबकि जो हकीकत है, जो होना चाहिए, जैसे तो इस आखिरी जुमलों में दुआ के तो खुदाया मेरी तमाम इन अमाल का, मेरे बैठने उठने, काम करने, नेकी करने, दुआ मांगने, इस सब का जो सवाब बने, तो वो सवाब तू मुझे दो चीजों की शक्ल में दे, एक खुशनुदी तेरी रजा यानी तू मुझसे राजी हो जा, और दूसरा फिर इस मुझे जन्नत अता कर दे। ए पालने वाले, वो सब कुछ दे जो मैंने मांगा है, और अपने फजल से उसमें इजाफा कर दे, बेशक मैं तेरी चाहत रखता हूँ। ए जहानों के पालने वाले, ए माबूद, बेशक तूने अपनी किताब में यह हुक्म नाजिल किया है कि जो हम पर जुल्म करें उसे माफ कर दें। यानी अगर हमने किसी पर जुल्म किया है तो किसी पर हमने मुझ पर यानी हम पर किसी ने जुल्म किया है तो उसे माफ कर दिया जाए, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया तू हमें माफ फरमा, यकीनन तू हमसे ज्यादा इसका अहल है, तूने हमें हुक्म दिया कि हम सवाली को अपने दरवाजे से ना हटाएं, और मैं तेरे हुजूर सवाली बन के आया हूं, बस मुझे दूर न कर, मगर जब मेरी हाजत पूरी कर दे। तूने हमें हुक्म दिया है कि जो अफराद हमारे गुलाम हैं हम उन पर एहसान करें, और हम तेरे गुलाम हैं, बस हमारी गर्दनें आग से आजाद फरमा। ए वक्त मुसीबत मेरी पनागाह, ए सख्ती के हंगाम में मेरे फरियाद रस, तुझसे फरियाद करता हूँ और तुझसे दाद खा हूँ, मैं पनाह चाहता हूँ तेरी न किसी और की। और सिवाय तेरे किसी से कशाइश का तालिब नहीं हूँ, यानी मेरे लिए जो वसअत हो, मेरे कामों में जो आसानी हो, मेरे रिज्क में जो वसअत हो, मैं तुझसे तलब करता हूँ, तेरे अलावा किसी से नहीं मैं तलब कर रहा। बस मेरी फरियाद सुन और रिहाई दे मुझे, ए वो जो कैदी को छुड़ाता है और बहुत सारे गुनाहों को माफ करता है। मेरे थोड़े अमल को कबूल फरमा और मेरे बहुत सारे गुनाह माफ कर दे। बेशक तू बहुत रहम करने वाला, बहुत बख्शने वाला है। मेरे थोड़े अमल को कबूल फरमा, इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान अमल थोड़ा करे, नहीं, हम जितना भी करें, अगर हम उन नेमतों का, खुदा की उन रहमतों का जो हम पर अल्लाह करता है उसके तकाबुल में देखें तो हमारा अमल बहुत थोड़ा है। याद रखिएगा, इस थोड़े अमल का ये मतलब नहीं कि थोड़ा करना है, ज्यादा अमल नहीं करना, नहीं, ज्यादा करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है, लेकिन उसको ज्यादा समझना नहीं, उसको थोड़ा ही समझना है। मेरे थोड़े अमल को कबूल फरमा, मेरे बहुत सारे गुनाह माफ कर दे। बेशक तू बहुत रहम करने वाला, बहुत बख्शने वाला है। ए माबूद, मैं तुझसे ऐसा ईमान और यकीन मांगता हूँ जो मेरे दिल में जमा रहे, यहाँ तक कि मैं समझूं कि कोई चीज नहीं पहुंचती सिवाय उसके कि जो तूने मेरे लिए लिखी है, और मुझे उस जिंदगी पर शाद रख जो तूने मेरे लिए करार दी है। ए सबसे ज्यादा रहम करने वाले। यहाँ पर दुआए अबू हमजे सोमाली का इख्तिताम होता है। खुदा के फजल करम से हमने इस माह मुबारक रमजान के इन साआत में, सहर के इन औकात में इन दुआओं का सिलसिला जो शुरू किया है, इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। मफातिउल जिनान के साथ साथ हम सहीफे सज्जादिया की दुआओं से भी इस्तेफादा करेंगे। कल इंशाल्लाह मैं सहीफे कामला में से एक आध दुआ मैं जरूर उसका शुरू करूंगा। तो इंशाल्लाह कल 4:15 से इसी टाइम पे इंशाल्लाह दुआ की नशिस्त जारी रहेगी। अगर कोई सवाल है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो हम दुआ सलामतियाँ ज़मानत से इख्तिताम करेंगे। दुआ सलामती इमाम ज़मान से इख्तिताम करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदे व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीयिकल حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.